के भव भाल पर, तन के भव भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।
ओम शांति। सोमान की भट्टी का आज 40वां दिन है और सोमान है मैं हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली विशेष आत्मा हूं। वास्तव में सोमान में स्थित रहना ही अपने आप में कमाई है। कमाई अर्थात इनकम, चढ़ती कला, प्रगति होना, परिवर्तन होना, सफलता प्राप्त करना। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि हर कदम में अपने आप को विशेष आत्मा समझो। अगर हम संसार में भी देखते हैं तो जो विशेष आत्माएं होती हैं उनकी हर एक्टिविटी भी विशेष होती है, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या कोई किसान भी हो जिसे कमाई करनी होती है, आगे बढ़ना होता है, या समाज का उत्थान करने में अपना अहम योगदान देना होता है, तो उसकी स्मृति भी विशेष रहती है। उसको वो हमेशा उस स्मृति में रहते हैं कि हमारा क्या दायित्व बनता है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति। इसलिए बाबा कहते हैं जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसे हमारे कर्म होंगे, जैसी स्मृति वैसी सृष्टि बनेगी, जैसी स्मृति वैसी दृष्टि होगी, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति भी होगी। तो सोमान अर्थात स्मृति में रहना है। सोमान हमारी सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। जैसे बाबा उस दिन बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि स्मृति तो रहती है लेकिन उस स्मृति में समर्थ ही चाहिए, शक्ति चाहिए। मैं आत्मा हूँ ये स्मृति है, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? विशेष आत्मा हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, कदमों में पद्मों की कमाई का जमा करने वाली आत्मा हूँ। तो उस स्मृति में समर्थ ही भरनी है, ताकत भरनी है, शक्ति भरनी है, बल भरना है। जितना हमारी स्मृति शक्तिशाली है, समर्थ है, उतना हमारी स्थिति भी शक्तिशाली रहेगी। हमारे कर्मों में वो परिणाम सार्थक निकलेंगे, वो कर्म भी प्रेरणादायी होंगे। तो आज ये 40वां दिन इस सोमान की भट्टी का है। तो बाबा कह रहे हैं सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी, कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि आपने अपना बना लिया, बाप को अपना बना लिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है? भगवान के बच्चे बन जाना ये सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना, केवल इस स्मृति में रहना कि हम भगवान के बच्चे बन गए हैं, तो पद्मों की कमाई जमा होना आरंभ हो जाएगी। किसके बने हैं और क्या बने हैं ये भी याद रखो, तो कमाई होती रहेगी। विश्व की आत्माओं की निगाह नज़र आपके ऊपर है, इतनी ऊंचे से ऊंची आत्माएं हो तो सदा हर पाठ बजाते उठते बैठते चलते इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पाठ बजा रहे हैं। ये ब्राह्मण जीवन है ही आदि से अंत तक स्टेज के ऊपर पाठ बजाने के लिए। जब सदा स्मृति रहेगी कि मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ, तो स्वतः हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन रखकर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। ये मुरली है 21 नवंबर 1981। तो बाबा कह रहे हैं सदा अपने आप को विशेष आत्मा समझो, तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कमाई करने के लिए हमको कौन सी अटेंशन रखने की ज़रूरत है। जैसे एक बिजनेसमैन होता है और कमाई का सीजन चल रहा है, तो किसी भी सूरत में भले कितने भी परिस्थितियां आए लेकिन अपने कमाई को सीजन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि सारे साल की कमाई का सीजन अभी है। जैसे अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी आती है, बीमारी आती है, तो भी बीमारी में भी वो दुकान पर जाएगा, बिजनेस करेगा। कमाई के समय वो सुस्ती नहीं करेगा, उसको पता है ये टाइम कौन सा चल रहा है, कोई बहानेबाजी नहीं करेगा। हर हालत में वो बिजनेस के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि कमाई का समय चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा सारे कल्प की कमाई जमा करने का आधार केवल अभी संगम योग है। जमा का खाता अभी ही जमा कर सकते हो, ये बैंक केवल अभी खुला है, बाद में ये बैंक बंद हो जाएगा। और इसमें हमने अगर अभी जमा नहीं किया तो फिर सारे कल्प की कमाई हमारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, वो खाता खाली होगा। इसलिए आज भी बाबा ने कहा कि अंत में हाय हाय कौन करेगा, कि जो बाप का बनकर जीते जी भी पुरुषार्थ नहीं करते वो हाय हाय करेंगे। तो हम भगवान के तो बन गए, लेकिन बनने के बाद भी सारा पता होते भी कि कमाई का समय अभी है और वो कमाई हम ना करें तो बाद में पछताना पड़ेगा, हाय हाय करना पड़ेगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्थात मन में इतनी गिल्ट कॉन्शियस पैदा हो जाएगी कि धर्मराज की सजाओं से भी बहुत तेज कड़क सजाएं अनुभव होंगी, अर्थात वो खुशी टोटल गायब हो जाएगी। वो विचार चलेंगे कि भगवान का बनने के बाद भी जो हमको कर लेना चाहिए था और हमने नहीं किया, और कर सकते थे, समय भी था, सारी परिस्थितियाँ अनुकूल थी, सर्व का सहयोग भी मिल रहा था, वातावरण का भी सहयोग था, समय भी सहयोगी था, भगवान का भी सहयोग था, परिवार का भी सहयोग था, ये सब अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद भी अगर हमने उनका फायदा नहीं उठाया तो फिर बाद में आय हाय करनी पड़ेगी, पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को समझे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, विशेष कार्य के निमित्त हूँ, और किसने हमको ये विशेष आत्मा बनाकर विशेष कार्य के निमित्त बनाया है, अगर हम ये स्मृति में रखेंगे तो उसकी मदद भी स्वतः मिलेगी। चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, प्रकृति, माया, व्यक्ति, किसी की तरफ से भी कैसे भी परिस्थितियां आएं, लेकिन वो सब होते हुए भी हम अपने पुरुषार्थ के प्रति पूरा संवेदनशील रहें, पूरा जागरूक रहें, तो हर कदम में फिर कमाई जमा होने की दिशा अपने आप तय हो जाती है, मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। जैसे किसान है, फसल बोई है, अगर उसको अच्छी पैदावार प्राप्त करनी है, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसकी उसके देख रेख भी करनी पड़ेगी। समय पर उसको खाद पानी हर चीज़ देगा वो। उसी तरह से ये भी हम कर्मों की फसल बो रहे हैं। जैसे बाबा ने बताया, अगर स्मृति रहेगी तो तुम्हारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा। तो हम विशेष आत्मे अगर हैं तो कर्मों में श्रेष्ठता लाने के लिए भी हमें उन कर्मों को, कर्मों की खेती को ज्ञान का जल देना पड़ेगा, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करना पड़ेगा। अपने मन की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अच्छे अच्छे संकल्पों का बीज बोना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, हर्ष में अपने आप को विशेष आत्मा समझो। तो सबसे पहले तो हमारी स्मृति कैसी हो, हमेशा समर्थ, सकारात्मक, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, पावरफुल, बलशाली, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली, प्योर वाइब्रेशन वाली, वो हमारी स्मृति, कल्याणकारी स्मृति हो। ऊंचे से ऊंची स्मृति कि हम इस विश्व के लिए प्रेरणा के पुंज हैं, चाहे वो स्मृति के हिसाब से, चाहे कर्मों के हिसाब से, चाहे याद तपस्या के हिसाब से। क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम हो विश्व की स्टेज पर, हर आत्मा की निगाह तुम बच्चों के ऊपर है। अगर हमको ये स्मृति रहती है कि पूरा विश्व हमको निरंतर देख रहा है, हर आत्मा की नज़र हमेशा हमारे ऊपर है, तो भी हम जागरूक रहेंगे, तो भी हमारे में वो आलस्य अलवेलापन नहीं आएगा। जिस काम के लिए हमको निमित्त बनाया गया है, उस काम के लिए फिर जागरूक रहेंगे। और वो तभी होगा जब हम सोमान की सीट पर सेट रहते हैं। जैसे बड़ा कोई ऑफिसर है, जब तक वो अपनी सीट पर सेट है, सारे कर्मचारी उसके नियंत्रण में रहते हैं, पूरा कामकाज ठीक ठाक से चलता रहता है। जैसे वो सीट से उतरा, सारे कर्मचारी आउट ऑफ कंट्रोल, अपनी मनमानी से काम करेंगे, उनको बिजनेस की चिंता नहीं होगी क्योंकि मालिक गायब है। उसी तरह अगर हम सोमान की सीट पर सेट रहते हैं, तो हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं, कर्मचारी हैं, तो ये भी हमारे अनुकूल, हमारे संकल्पों के अनुकूल हमें सहयोग देने में हमेशा तत्पर रहेंगी, हमारी मददगार बनेगी, कमाई हमारी जमा होती जाएगी। हर कर्म में, कर्म करने से ही पहले हमको ये कर्मेंद्रियाँ सचेत कर देंगी, क्योंकि ये हमारी सहयोगी बन चुकी हैं। और अच्छा मालिक जो होता है, वो अपने पूरे स्टाफ को भी बड़े प्यार से चलाता है। कोई भी कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, तो समय पर उसको मालिक सहयोग देता है, तो कर्मचारी भी खुशी खुशी मालिक को सहयोग देता है। फिर वो कर्मचारी बीमारी में भी ये बहाना नहीं देगा कि मैं आज बीमार हूँ तो मैं काम पर क्यों जाऊँ। नहीं, मालिक उसका ट्रीटमेंट करेगा वहाँ, क्योंकि उसने उसको अपना कर्म समझ लिया है। उसी तरह से अगर हम सोमान की सीट पर सेट रह के इन कर्मेंद्रियों की अच्छी तरह से पालना करते हैं, इन कर्मेंद्रियों को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, इन कर्मेंद्रियों को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो समय पर ये हमारी सहयोगी बन जाती हैं। चाहे कैसी भी बीमारी हो, मूड ऑफ हो, कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा हो, लेकिन अगर हमने इन कर्मेंद्रियों को अपना सहयोगी बना लिया, तो जहाँ भी हम हैं, जिस भी स्थान पर हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं, तो एक कर्मेंद्रियाँ उस समय हमको पूरा सहयोग देंगी शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए, अच्छी अच्छी स्मृतियों का पानी देने के लिए हमको इस हमेशा सहयोग देंगी। हमारी वृत्ति, स्मृति, वृत्ति, कृति, दृष्टि, ये श्रेष्ठ हो जाएगी। और इनके आधार पर बाबा कहते हैं, सृष्टि भी कैसी हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। तुम्हें स्नेहमयी सृष्टि बनानी है, संडे की मुरली में था ना, स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेह की कृति। अगर ये है तो हमारी सृष्टि भी कैसी बन जाएगी, स्नेहमयी सृष्टि बन जाएगी। तो सारा आधार हमारी स्मृति पर है। तो अगर हम अपनी सीट पर सेट रहते हैं, तो ये जो मन, बुद्धि, संस्कार, हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ हैं, ये भी हमको मन अच्छे अच्छे संकल्पों की पैदावार हमको प्राप्त कराएगा। बुद्धि अच्छी जजमेंट करेगी, संस्कार हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, और संस्कारों का एक बार निर्माण हो गया अच्छी तरह से संस्कार हमको, फिर पुराने संस्कार आकर्षित नहीं करेंगे, नए संस्कार अपने आप पड़ते जाएंगे, और उन नए संस्कारों के आधार पर जो हमको महसूसता होगी, अच्छा रिजल्ट निकलेगा, तो फिर हमारा पुरुषार्थ का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है, आगे अपने आप रास्ता निकलाता है। समय पर मन बुद्धि संस्कार सहयोग देते हैं तो हम इस पुरुषार्थी जीवन का अच्छा सुख ले सकते हैं। तो जो विशेष आत्मा की स्मृति से हमको कितने फायदे हो जाते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा समझो कि हम विश्व की स्टेज पर हैं। जो व्यक्ति स्टेज पर होता है उसका अपने हर कर्म के ऊपर विशेष अटेंशन रहता है, उसकी ड्रेस, उसकी हर एक्टिविटी, उसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल, पूरे दर्शक उसके ऊपर पूरा निगाह रखते हैं। उसको पता है एक बार अगर जो पार्ट प्ले कर दिया, सबके मन में उसके प्रति जो एक एटीट्यूड चला जाएगा सबके प्रति, वो परमानेंट हो जाता है। एक बार अगर हमारे प्रति किसी के मन में नेगेटिव चला गया संस्कार, नेगेटिव कोई बात चली गई, तो उसको निकलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म दाग उनके मन में बना रहेगा। इसी तरह से बाबा कहते हैं तुम विश्व की स्टेज पर हो, हर आत्मा तुम्हें हर समय देख रही है, अर्थात वो हमारे से प्रेरणा ले रही है। जैसा कर्म हम करेंगे बाबा कहते हैं तुम्हें देखकर दूसरा करेंगे, जैसा संकल्प हम करेंगे वैसे संकल्प दूसरों दूसरी आत्माएं अनुभव करेंगी, उनके मन की मन में भी वही संकल्प उत्पन्न होंगे। तो बाबा कहते हैं हमेशा अपने आप को विशेष आत्मा समझो, विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो, विश्व की हर आत्मा हमारे से जुड़ी हुई है। बाबा कहते ना ऐसे महसूस करो जैसे विश्व की सारी आत्माएं तुम बच्चों के मस्तक के आगे घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। ये बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। तो हमेशा हम इस स्मृति में रहें कि हम विश्व की स्टेज पर हैं, सारे विश्व की निगाह हमको कैसे देख रही है। अगर हम खराब कर्म करें तो घूर घूर के देख रही है कि ये इष्ट देव हमारे इष्ट देवियां और ये कर क्या रहे हैं, तो और बड़े प्यार से भी देख रही हैं, स्नेह से भी देख रही हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उम्मीदों के साथ देख रही हैं, उम्मीद है उन्हें, तो सम्मान सम्मान की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से उनके मन में उम्मीदों के दिए जगे हैं कि हमारा जीवन में जो अंधकार है रोशनी यहीं से मिल सकती है। जैसे उस दिन भी बताया था ना कि तुम हो अंधकार को समाप्त करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो सूर्य का क्या कर्तव्य होता है। तो हम सब इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, पूरा संसार देख रहा है कि जो भी हमारी मनवांछित इच्छाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, वो यहीं से पूर्ण होंगी। तो अगर हम इन विशेष स्मृतियों में रहते हैं तो हमारी स्थिति समर्थ रहेगी और निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भी सहज बन जाएंगे। फिर हमको पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहती है। जैसे एक बार गाड़ी अगर पटड़ी पर डाल दी जाए तो स्वतः चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में हमको चेक भी करना पड़ता है कि कहीं पटड़ी उखड़ी तो नहीं हुई है, अर्थात हमारी स्मृति कहीं लड़खड़ा तो नहीं रही है, स्मृति हमारी सीधी है या इधर उधर हम जिग जैग एक डॉगी की तरह जो जाता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो भले हम रास्ते में सीधे तो जा रहे हैं लेकिन हमारी स्मृतियाँ जिग जैग तो नहीं है, कभी उधर जा रहे हैं, जाना है हमको सीधा परमधाम, और कभी उधर जा रही स्मृति, कभी उधर जा रही है, कभी लौकिक में जा रही है, कभी बिजनेस में जा रही है, कभी किसी के संकल्पों को पकड़ के रखा हुआ है, कभी किसी ने कोई बोल बोले हैं उनको पकड़ के रखा हुआ है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, पिछली स्मृतियां हैं, पिछले संस्कार, उनको पकड़ के रखा हुआ है। तो यात्रा में जो समय पर हमको पहुंचना चाहिए था वो हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बाबा कहते एक रस एक ही स्मृति अव्यभिचारी याद तब रहेगी जब हम इस स्मृति में रहेंगे कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, विश्व की स्टेज पर हूँ, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली हूँ। तो ये कमाई करने का सीजन अब चल रहा है, ये छोटा सा संगम युग है। अगर इस संगम युग को हमने लापरवाही पूर्वक गवा दिया तो एक बार जो हाथ से निकल गया टाइम, तो फिर बाद में वो पछताना पड़ता है। तो कल्प कल्प की बाजी है ये। तो हमको इस ब्राह्मण लाइफ से भी सीखना है, क्योंकि हर एक ने इस ब्राह्मण लाइफ में कहीं ना कहीं तो बहुत बार धोखा भी खाया होता है। जो हमको उसमें सफल करना चाहिए था वो समय हमने गंवा दिया, तो उससे भी हमको सीखना है, उससे भी हमको पश्चाताप करना है कि वो हमको समय कैसे सफल करने कर लेना चाहिए था और हमने किया नहीं, तो उससे भी सीख के हमको आगे के लिए एक शिक्षा लेनी है, सावधानी लेनी है और श्रीमत पर आगे बढ़ते जाना है। तो बाबा कहते हमेशा अपने आप को विशेष आत्मा समझो, स्मृति को समर्थ बनाओ। तो हमें एक अपनी इसलिए एक लिस्ट बनानी है, अपनी विशेषताओं की लिस्ट भी बनानी है, जो हमें दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। जो विशेषताएं हमें भगवान ने बाबा ने प्रसाद के रूप में दी है कि उसने हमको ब्राह्मण जन्म लेते ही हमको क्या कर दिया। उस दिन पिछले थे, पिछले संडे की मुरली में था ना कि बाबा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही तुम बच्चों की बुद्धि में हाँ श्रीमत भर दी। कितना अच्छा सेंटेंस था ये। जैसे बाबा ने पुरानी जो स्मृतियां थी बुद्धि से निकाल कर हमारी बुद्धि में श्रीमत भर दी, अर्थात भगवान ने अपने महावाक्य भर दिए उसमें। हमारे जीवन की दिशा किस तरफ जानी चाहिए, कहाँ हमारा कल्याण है, हित है, हमारा जीवन किस लिए है, वो सारी श्रीमत उसने भर दी है बुद्धि में। क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीज़ें उसने बता दी। तो कितनी बड़ी विशेषता है, भगवान की भी विशेषता ये है कि हमारा वो कखपन अंदर से जो कूड़ा किचड़ा जो था, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ जो हमको पीड़ा दर्द दुख देती रहती थी, वो सारी उसने निकाल दी बुद्धि में से और क्या भर दिया, एक नई स्मृतियाँ, श्रेष्ठ स्मृति भर दी। इसलिए काल की मुरली में था ना बाबा है गोल्डन सर्जन, गोल्डन स्मृतियाँ उसने हमारी बुद्धि में भर दी, उसने हमारा इलाज कर दिया, उपचार कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, सारा अंदर से कूड़ा किचड़ा पस सब निकाल दिया और अंदर में क्या भर दिया, गोल्डन वर्शंस भर दिए, सुनहरी स्मृतियाँ भर दी, सुनहरी यादें भर दी, सुनहरी शिक्षाएं भर दी उसने। तो कितने बाबा की हमारे ऊपर रहमत है, वो रहमत का वो सागर है, रहम का सागर है। तो हर पल वो हमें विशेष आत्मा के रूप में देखना चाहता है कि मेरा हर बच्चा विशेष आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे कोई पुरुषार्थ करता भी नहीं है, चाहे कोई अमृत वेले भी नहीं उठता है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन मेरा तो बना कम से कम, उसने मुझे तो पहचाना, तो उसको अगर हम उसी विशेषता से देखते हैं, उसी दृष्टिकोण से, उसी एटीट्यूड से, उसी वृत्ति से, हर आत्मा के प्रति जो पुरुषार्थ भले नहीं करती है लेकिन उसकी इस विशेषता को उसी स्मृति में दिलाते हुए हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो उसमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है, पुरुषार्थ करने के लिए भी उसके अंदर एक अच्छे अच्छे संकल्पों की उत्पत्ति होती है, एक नई ऊर्जा के साथ वो भी पुरुषार्थ करने लग पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं को सदा स्मृति में रखो कि कितनी सारी विशेषताएं हैं, हर कदम में उसने विशेषता से भरपूर कर दिया हमको। स्मृतियाँ हमारी विशेष, हमारे कर्म विशेष, हमारे संकल्प विशेष हो गए, मनसा वाचा कर्मणा कैसे कैसे हमारे संकल्प हो गए, उस कैसी हमारी स्थिति रहती है, तो हमको हमेशा याद रखना है। तो बाबा कह रहे हैं सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है, हर समय अपने आप को विशेष आत्मा समझो। तो जैसी स्मृति, जैसे उस दिन संडे के मुरली में बाबा ने कहा ना कि जो विशेष आत्माएं होती हैं, रॉयल आत्माएं होती हैं, वो छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हैं। पिछले संडे के मुरली में यानी हाँ, छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को बिज नहीं करेंगी। छोटी छोटी बातें कौन सी होती हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उसी को पकड़ के रखा हुआ है, अपने या पुराने कोई ऐसे असफलता के पल होते हैं उसको पकड़ के रखा हुआ है, या कोई लौकिक की स्मृतियाँ हैं वो पकड़ के रखी हुई हैं। छोटी छोटी बातें जो हैं हमारे पुरुषार्थ को खा जाती हैं, हमारे सुख को छीन के चली जाती हैं। वो बाबा कहते हैं बात को भी अकल है, बात चली ये वो आएगी 5000 बाद, और तुम बच्चे पाप के साथ हो तो अपने आप को इतना बेसमझ बना लिया कि पूरा पूरी सृष्टि का मालिक वो नॉलेज ज्ञान का सागर तुम बच्चों को उसने समझ दिए, तो तुम इतने बेसमझ क्यों बन जाते हो। आज की मुरली में थे ना, आज की मुरली में भी है कि तुम कितने बेसमझ बन गए थे, तो बाबा हमको कितना समझदार बाकर बना देते हैं। तो छोटी छोटी बातों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है कि अपने आप को विशेष आत्मा समझो। तो कौन कौन सी विशेषताएं, एक तो अपने लिस्ट, और जो हमारे जिनके ज़्यादा हम अधिकतर संबंध संपर्क में रहते हैं, कर्म क्षेत्र जब हम जाते हैं
उनकी भी विशेषताएं हमारे जहन में होनी चाहिए, बुद्धि में होनी चाहिए, ताकि दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो हम केवल विशेषताओं का ही वर्णन करें, अपने दुखड़े नहीं सुनाने लग जाएं, नहीं। और अगर हम दुखड़े सुनाते हैं तो हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति हमेशा वैसी बनी रहेगी। हमने संस्कार डाल दिया दूसरे के अवगुणों को देखने का, दूसरों के विशेषताओं को देखने की बजाय हम अवगुणों को देखने में लगे तो हमारे हमेशा वही संस्कार आएंगे, परिवर्तन होगा नहीं। चाहे वो हमारे में भी अवगुण है, उनको भी हमको हाँ एक नज़र तो रखनी है, अपने आप एक अटेंशन तो रखनी है कि हमको उनको परिवर्तन करना, लेकिन उसको पकड़ के भी इतना भी नहीं बैठ जाना कि हम विशेषताओं को अपनी भूल ही जाएं, हमारा टाइम ही दूसरों के अवगुण गए, अपने अवगुणों के चिंतन में लगा रहे। हाँ, अवगुणी बुद्धि का नाश करो, चाहे वो हमारी बुद्धि है चाहे दूसरी है। तो हम दूसरों के व्यर्थ को भी समाप्त करने वाला था ना, तीन दिन पहले क्लास कराई थी व्यर्थ को समाप्त करने के लिए, दिनेश भाई ने, व्यर्थ को समाप्त करने वाली मैं समर्थ आत्मा हूँ। तो वो किसके लिए बोले, वो हमारे लिए बोला ना। तो हमें व्यर्थ का वर्णन नहीं करना है, जो व्यर्थ है जिससे हमारा उत्थान नहीं हो रहा है। हाँ, अटेंशन तो रखनी है, बीच में जागरूक न करने के लिए हमें सतर्क तो रहना है, ताकि ऐसा ना कि हम व्यर्थ के बहाव में चले जाएं, वो भी अटेंशन रखना जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं, जैसी समृद्धि होगी वैसी स्थिति होगी, हो जाएगी, कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा ये स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि बाप ने अपना बना लिया, स्वयं भगवान ने अपना बना लिया, इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है। भगवान के बच्चे बन जाना ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, तो ये विशेषता सभी में, सब ब्राह्मण आत्मा में है। कितनी बड़ी विशेषता है कि पवित्रता को जीवन का आधार बना लिया, जिसको संसार के लोग भी कितना असंभव समझते हैं। कल का स्लोगन था ना, क्या स्लोगन था, सहयोग की शक्ति से असंभव बातें भी संभव हो सकती हो जाती हैं। तो हमें भी सहयोग देना है एक दो को, बाबा हमको कितना सहयोग दे रहे हैं कि हमको विशेष आत्मा की नज़र से देख रहे हैं, विशेष स्मृतियाँ दिला रहे हैं। तो स्मृति विशेष है, स्थिति भी विशेष बन जाएगी और कर्म भी हमारे विशेष हो जाएंगे। तो भगवान के बच्चे बन जाना ये है सबसे बड़ी विशेषता। सदा इसी स्मृति में रहना अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना, किसके बने हो, क्या बने हो, और तीसरा यहाँ बोला नहीं लेकिन क्यों बने हो। अगर हम सोचें हम बाबा के बने क्यों, अगर हमको ये भी स्मृति रहे तो हमारे कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे, स्मृति स्वतः श्रेष्ठ रहेंगी। एक जो सुस्ती बुद्धि में सुस्ती सी छाई रहती है, अपने आप हम उससे निकल आएंगे। एक जो संकल्प हमारे सोए रहते हैं, क्योंकि संकल्प अच्छे संकल्प भी अंदर ही हैं, कोई बाहर से नहीं आएंगे, वो सब चीज़ें अंदर तो हैं, वो बीज सुषुप्त अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन उस बीज को हम स्मृति का जल देंगे, धूप देंगे, ज्ञान योग का बास धूप जलाते रहेंगे, तो स्मृतियों का जो बीज है वो उगेगा बाद में। हाँ जी, बाद में अग्नि देंगे, हाँ अग्नि जलाएंगे तो पुरानी स्मृतियाँ जलकर भस्म हो जाएंगी, नई स्मृतियाँ आएंगी। जैसे जंगलों में आग लगती है, आग लगने के बाद क्या होता है, सारा जंगल काला काला दिखाई देता है, लेकिन जब बारिश पड़ती है तो फिर भी बीज अंकुरित होकर निकलाते बार, वो कोमल कोमल हरे हरे पत्ते कितने अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन में बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ शक्तिशाली सुखदायी संकल्पों के बीज हैं, लेकिन वो बहुत नीचे पड़े हुए हैं, हम ऊपर ऊपर में देखते रहते हैं, विकारों की अग्नि से जले हुए हैं। तो अगर हमको उससे मुक्त होना है तो हमको ये समर्थ स्मृतियों का जल हमको देते रहना है, ताकि वो जो अंदर में जो हरियाली छिपी है, जो बीज हैं, वो अंकुरित हो सके समय पर। इसलिए बाबा कहते हैं विशेष आत्मा की स्मृति में सदा स्थित रहो। तो सदा ये याद रखो कि विश्व की आत्माओं की निगाह हमारे ऊपर है, सारे विश्व की आत्माएं देख रही हैं, इतनी ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हो तो सदा हर पाठ बजाते उठते बैठते इस स्मृति रहो में रहो कि हम स्टेज पर पाठ बजा रहे, है ना। जैसे जन्म लेते कोई महान नहीं बन जाता, लंबा सफर लगता है। अभी हम वर्तमान समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखें, उनकी पहले की स्मृतियां कैसी होती होंगी, और अब जिस स्टेज पर बैठे हैं वो, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, अभी स्मृति कैसी होगी, कितनी श्रेष्ठ स्मृतियां होंगी। एक वसुदेव कुटुंब की भावना हमेशा उनके मन में होगी, अभी वो छोटी मोटी स्मृतियां नहीं है, वो स्टेट की स्मृति नहीं है, वो केवल देश की स्मृति भी नहीं है, वो विश्वव्यापी स्मृतियां भी उनके मन, क्योंकि वो सीट पर सेट हैं अभी। लेकिन जब वही एक सामान्य वर्ग में थे, एक अपने घर में थे, तो उस समय की स्मृतियां कैसी थी, तो हम लौकिक में थे कैसी स्मृतियां थी, अब कहाँ है, विश्व की स्टेज पर है, केवल भारत की स्टेज पर भी नहीं। बाबा कहते तुम हो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो हम उस स्टेज पर हैं, तो हमारी स्मृतियां भी कितनी समर्थ होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं हमेशा अपने आप को समझो कि विश्व की आत्माओं की निगाह हमारे ऊपर है, इतनी ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हो, तो सदा हर पार्ट बजाते उठते बैठते चलते इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। ये ब्राह्मण जीवन है, ये है, ये ब्राह्मण जीवन है ही आदि से अंत तक स्टेज के ऊपर पार्ट बजाने के लिए। चाहे हम सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी हैं, सदा स्टेज पर हैं। हम सो भी रहे तो भी हमारे सपनों के वाइब्रेशन पूरे संसार को जा रहे हैं। अगर लड़ाई झगड़ा करें तो सारा संसार लड़ाई झगड़ा करेगा, तो सपनों का प्रभाव भी पूरे संसार पर पड़ेगा। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, गर्भ में होता है, तो जो माँ सोचती है, माँ खाती है, उसका पूरा उसके उसमें जाता है, स्मृति में जाता है, उसके वैसे संस्कार बनेंगे। तो बाबा के व्यक्त महावाक्य हैं कि हमेशा समझो सारे विश्व की आत्माएं आपके गर्भ में हैं, तो उनकी पालना कैसे होगी। हाँ, अर्थात हम हैं जगत माताएं, तो जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारा सारी आत्माओं क्या समझने, मेरे पेट में सारी आत्माएं समाई हुई, वो सकाश देने के लिए सबसे आसान काम है ये, दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब माँ गलती करेगी तो बच्चे पेट में लात मारेंगे तो आत्माएं भी अंदर से हमको काटेंगी, जागरूक करेंगी, स्तर कराएंगी। तो जब सदा ये स्मृति रहेगी कि मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूं, तो स्वतः हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन रखकर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती जाएगी। तो ये था। तो दूसरा, अब कमाई के और क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो ज्ञान को हम जितना जितना अर्जित करते जाएंगे तो कमाई हमारी बढ़ती जाएगी। दूसरा, बाबा कहते हैं अमृत वेले है कमाई का समय, याद की यात्रा। तो अगर हम अमृत वेले जितना भी करते हैं या सारे दिन में जितना भी याद की यात्रा में रहते हैं, अर्थात जितना समय हम जगे हुए हैं उतना समय हम होश में रहें, जागरूक अवस्था में रहें। ऐसा नहीं कि सवेरे तो हमने कमाई अच्छी कर ली और फिर दिन में हमारा लीकेज हो गया, अर्थात हमारी स्मृतियाँ जो समर्थ होनी चाहिए थी एक साधारण स्मृतियों में चले गए, नकारात्मक या व्यर्थ की परचिंतन में चले गए। तो हमारी स्मृतियाँ एक विशेष जो होनी चाहिए थी वो साधारणता में चली गई या व्यर्थ स्मृतियों में चली गई, तो हमारी सारी कमाई खत्म होगी। तो नॉलेज को भी सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, इसलिए पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आज भी बाबा कहते ना तुम्हारा पुरुषार्थ है दो बातों के ऊपर, कौन सी, आय की मूल्य में, पवित्रता और पढ़ाई पर, आय की मूल्य में। तो सारे दिन में हम अगर पढ़ाई के प्रति भी हम संवेदनशील रहते हैं, थोड़ा जागरूक रहते हैं, कुछ ना मनन चिंतन करते रहते हैं, आपस में चर्चा करते रहते हैं, किसी के साथ शेयर करते रहते हैं अनुभवों का, तो भी हमारी अर्थात कमाई हो रही है। और तीसरी बात है, जितना हम सारे दिन में अशरीर अवस्था का अभ्यास करेंगे तो जो वाइब्रेशन बाबा कहते हैं जितना तुम अशरीर रहते तो सारे संसार को शांति का जान जाता है, और जितना सुदर्शन चक्करधारी बनकर जाते उतना क्या मिलता है सारे संसार को, सुख और शांति सुख मिलता है। तो अशरीरी बनना भी एक कमाई का सोर्स है, सुदर्शन चक्करधारी होकर रहना ये भी कमाई का सोर्स है, अमृत वेले या दिन में सारे दिन में जितना हम याद की यात्रा में संलग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो भी एक कमाई का सोर्स है, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं ये भी कमाई का सोर्स है, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, दान करते हैं, वो भी कमाई का सोर्स है। और कौन सा कमाई का सोर्स हो सकता है, जितना दूसरों को बांटेंगे उतना बढ़ेगा वो, तो ये भी कमाई का सोर्स है। और कमाई का सोर्स सहयोग देना, समय पर हम किसी को सहयोग देते हैं, और सबसे बड़ा सहयोग तो किसी अननोन पर्सन को, जान पहचान वाले को सहयोग देना फिर भी आसान काम है, और वहाँ हमारे थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा स्वार्थ भी छिपा होता है कि अगर हम इसको सहयोग देंगे ना तो कल को हमारे हमें सहयोग देगा क्योंकि हमारे आसपास रहता है। लेकिन जो अननोन पर्सन है, जो हमको अचानक मिला, जैसे चिमन भाई हैं, कोई भी हो, ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण हो, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको सेव को देते रहेंगे। राखी बांधने जाते हैं तो बाबा कहते हैं ना उनको बताओ हम आपसे पैसे लेने नहीं आए हैं, उनको बताओ क्या बताओ, काल की मुरली में था राखी से संबंधित, क्या बताओ, नहीं अभी तुम पवित्र बनेंगे तो 5,000 वर्ष के लिए तुमको क्या होगा और क्या करना, फिर तुमको कमाई होगी, तुमको बाप, तुम भी बाप के बरसे के हकदार बन जाएंगे, ऐसा कुछ था। तो हमको समय पर सहयोग देना है, अननोन पर्सन का भी, और सहयोग बहुत सारी बातों से होता है, जरूरी नहीं है किसी को ज्ञान सुनाने का सहयोग देना है, खिलाने पिलाने का सहयोग दे सकते हैं। जैसे कोई कोई इधर आते हैं तो संसार में तो ये परंपरा होती है, लंगर चलते रहते हैं। वहाँ तो किसी भी अगर बड़ी बड़ी संस्थाओं में चले जाते हैं तो लंगर तो चलते रहते हैं। यहाँ भी कोई कोई आते हैं तो वो बोलते हैं यहाँ भोजन मिलेगा। अगर हम उनको मना कर दे तो बोले कैसे लोग हैं ये। अगर उनको भोजन भी करा देते हैं तो देखा जाता है वास्तव में वो ज्ञान में भी चल पड़ते हैं और बाद में आके मिलते भी हैं। केवल हम यहाँ भोजन और टोली खा के गए थे और फिर अब वापस ज्ञान में आ गए। बाबा के महावाक्य, बाबा के महावाक्य तो हैं ये। और कोई एक भाई था, बोला अब किसी के मुंह में तोसा गया माना अब ये गया जिंदगी से, अब ये तो भगवान का मन ही आएगा। तो बाबा का जो कणा दाणा है एक बार मुख में चला गया तो वर्षे का हकदार किसी न किसी रूप से बन ही जाएगा। इसलिए बाबा कहते जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा जो अन्न है कौन सा अन्न है? ज्ञान का अन्न कौन सा है? हम किसी को कौन से संकल्पों का भोजन करा रहे हैं? जो भी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो भी हमारी वृत्ति है, वाइब्रेशन है, ये भी अन्न के रूप में, भोजन के रूप में दूसरों को जाता है। जो हमारे वाइब्रेशन है ये भी भोजन के रूप में, जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ को, किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर? वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। जैसे आसपास के वाइब्रेशन होगी वैसे वहाँ हरियाली होगी, वो पेड़ पौधे मुस्कुराएंगे, डांस करेंगे, नृत्य करेंगे। तो उतना ही जितना यहाँ हम भी प्रकृति को सहयोग देंगे तो फ्यूचर में प्रकृति हमको क्या करेगी? बड़े बड़े फल देगी। और क्या करेगी? उनके साज बजेंगे, अलग अलग वैरायटी साज बजेंगे संगीत के रूप में, जगाएगी तुमको। तो इस समय हमको ये भी कमाई करने का एक ये भी सोर्स है, प्रकृति को दान देना। बाबा कहते मनसा दान करो, मनसा साकाश दो। तो प्रकृति को साकाश देना ये बड़ा सुखदायी है ये, क्योंकि जितना हम प्रकृति को साकाश देते हैं उतना हम स्वयं भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये विशेष आत्माओं के विशेष लक्षण थे, कैसे विशेष आत्मा बनना है, कैसे कमाई करनी है। विश्व की स्टेज पर हम हैं तो हमारी स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति संबंध संपर्क व्यवहार संग कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें आ गई हैं। तो ये अचानक का कार्यक्रम था, अचानक की लौटी मिली हमको क्लास की, क्लास किसी और की थी लेकिन भाग्य हमारे में आ गई, हमारे हाथ में आ गई। हमने तो किसी और को भी देना चाहा था अभी, लेकिन स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं। ओम शांति।
धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।